మద్భుతం తమం నిచంద్రభానునందిని
करते हैं नित्य लीला प्रवेशम च ददाति ही प्रजातिप अत परम प्राप्यम वैष्णवानं न विद्यते। इसके अतिरिक्त इससे बढ़कर के और कोई प्राप्त जीव के लिए अभी संभव नहीं। अभी तक हम लोगों ने कौतुक की पाठ किया, अभी एक चीज मैं बतलाता हूँ। हम लोगों ने उलहैन किंतु सत भटारी है, सत भटारी जानते हो,
चौदह भटारी
उनका कोई ठीक नहीं। यद्यपि कृष्ण को भी लेते हैं किंतु उन लोगों में झगड़ा विवाद है, ये कृष्ण का जन्म मथुरा हुआ या वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं जो गोकुल में जन्म हुआ। हम लोगों की एक निष्ठा, हम लोग ब्रह्मा भी आकर के कह देंगे और उद्धव जी आकर के कहें, अक्रूर कहें और वसुदेव देवकी भी आकर के कहें, अरे हम शपथ पूर्वक कहते हैं ये मथुरा में उनका जन्म हुआ, हम उनके शपथ को नहीं मानते हैं। हम लोग तो जानते हैं ये वो गोकुल में हमारी मैया यशोदा मैया के वो लाला है, नंद बाबा के वो कन्हैया है, सखाओं के वो सखा है और बलदेव जी के भैया वो है कन्हैया जी।
नारी के बराबर हुआ, नारी की सभा।
तो इस तरह से हम लोग विचार करेंगे, विशेषकर रात में सभा जो होगी हम उनका सबका सुनेंगे किंतु कहेंगे अपने और हम मानेंगे अपने ही। समस्त विश्व एक तरफ में और ब्रज के थोड़े से नीचे लोग एक तरफ में, वो कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं मानेंगे जो मथुरा में उनका जन्म। हम ये कह देंगे कृष्ण जी का अंश का कला यहाँ पर दर्शन दिया, बस वो कौन दर्शन, कृष्ण ही यहाँ आकर के चतुर्भुज रूप में अपने एक ऐश्वर्य यहाँ पर दिखलाया और फिर वही आकर के इनको आत्मसात करके रह गए, फिर उन्हीं को लेकर के गोकुल में बसते गए। बस यही बलदेव जी का जन्म भी वहीं पर रोहिणी के घर, देसी वाले घर जो है वो भी अंक है, इसका भी हम लोग का विचार। तो आएंगे सब लोग, ये सब लोग वर्णन करेंगे, सुनेंगे हम लोग और कीर्तन भी वैसे होगा 12 बजे तक कीर्तन और ये सब होंगे। आप लोग सभी लोग योगदान दें और कोई भी कोई गोलमाल न हो, ब्रह्मचारी लोग इस पर ध्यान रखें, बाहर के लोग देखेंगे किंतु आप लोग भी इसको अच्छी तरह से देखेंगे। शाम को भी कीर्तन पार्टी, अभी यद्यपि सब लोग आज निर्जला उपवास रहेंगे, रात में 12 बजे जन्म होने के बाद में उपलोक रहेंगे, विशेष करके जो समर्थ है वो जरूरी है, विशेष विशेष लोगों की जिनकी सामर्थ्य नहीं है,
जो बूढ़े हैं,
बूढ़े नहीं, बूढ़े से तात्पर्य नहीं है, बूढ़े खाएंगे दे करके सामर्थ्य रोग इत्यादि फिर वैसा करेंगे। कृष्ण पार्टी में कृष्णदास रघुनाथ सुदर्शन लीलानंद भवानंद रसानंद इत्यादि ये सब लोग हैं, देखेंगे और लोग आएंगे और घर से आप लोग निकाल देंगे।
Yeah.
अवतारों के अवतारी
श्री कृष्णचंद्र जी ने आज ही के दिन ठीक इसी समय में 12 एकदम बज रहा है नहीं पर प्रकट आप लोगों ने विद्वानों की बात सुनी मथुरापुरी में जन्मे या गोकुल के जन्मे विद्वान लोग कहेंगे मथुरापुरी में जन्मे उद्धव जी भी कहेंगे मथुरापुरी में जन्मे ब्रह्मा भी कह सकते हैं मथुरापुरी में जन्मे ब्रज की कोई गोपियां ब्रज के कोई सखा और लोगों की तो प्यास क्या वहां की कोई रेणुकना भी ये नहीं कर सकती कि नंद बाबा के पुत्र ये कृष्ण नहीं है जसोदा मैया के ये पुत्र नहीं है देवकी के पुत्र हैं ये कोई भी स्वीकार नहीं कर विशेष करके मैं वो तो उतना विद्वान नहीं यहाँ पर तो रसिकों की भरमार है बड़े बड़े सुंदर गायक कलाकार अभी बहुत से कलाकार रह गए जिनके मधुर कीर्तन की ध्वनि को आपने श्रवण नहीं किया मुझे तो क्षोभ हो रहा है कि उनको समय नहीं मिला तो मैं उनसे सर्वत्र होकर के क्षमा प्रार्थना करूंगा
बधाई कार्यक्रम
कल बधाई कीर्तन होगा 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक
रात में
बहुत से कलाकार लोग आएंगे जिनको कीर्तन का सुयोग नहीं मिला वहां पर पधारेंगे और कृष्ण के लिए ही यदि बधाई हो तो उनकी कला सफल है अन्यथा वो कला सफल नहीं है तो मैं ये 2 शब्दों में ये कहूंगा कि कृष्णचंद्र जी गोकुल में ही जसोदा के ही गर्भ से पैदा हुए यहाँ पर पैदा होने का कोई प्रश्न नहीं यहाँ पर वो प्रकट हुए आविर्भूत हुए किसी के गर्भ से नहीं वो तो संघ चक्र गदा पद्म लेकर के 16 वर्ष की अवस्था जैसे बड़ी बड़ी सुंदर अवतारों के साथ में अलंकारों से वो यहाँ पर प्रकट हुए मात्र इसलिए प्रकट होने वाले जो हैं ये विष्णु के अवतार वासुदेव हैं न कि ब्रजनंदन श्याम ब्रजनंदन श्याम सुंदर ही आराध्यो भगवान ब्रजे सतनस्तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिपासना बजुबद वर्गे कालुषिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अम्लम प्रेमा मर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमितम सत्राद्रो न महाप्रभु जी की यह मान्यता है अभी वल्लभाचार्य की मान्यता उन्होंने कहा बड़े सुंदर रूप में चैतन्य महाप्रभु जी की मान्यता कृष्ण ही कौन कृष्ण श्याम बहुत है किंतु हमारे श्याम वो नहीं है राम भी श्याम है वामन देव भी श्याम ही है जितने अवतार हैं द्वारका भी श्याम ही है मथुरेश कृष्ण भी श्याम ऐसा कोई अवतार नहीं यहाँ तक कि बारह सभी श्याम है किंतु हमारे श्याम और श्याम नहीं जिनके मोर मुकुट यहाँ पर सिर पर चंद्रिका नहीं जिनके अधरों पर बंसी मधुर नहीं जिनके हाथ में लकुटी नहीं जिसके कंधे पर कमरिया नहीं जिनका गोपेश नहीं जिनकी मैया जसोदा नहीं जिनके बपैया नंद बाबा नहीं वो कृष्ण श्याम हमारे नहीं जिनके बाएं में राधिका जी नहीं बल्कि तो मैं ये कहता हूँ कि वो कृष्ण कृष्ण नहीं हमारे आराध्य हैं जो कि राधा जी के पाए नहीं पलोसते सभी जगत कृष्ण की आराधना करते हैं और कृष्ण ही राधा जी की आराधना करते हैं वही श्याम हमारे श्याम इसलिए उस श्याम से हम यही प्रार्थना करेंगे श्याम सुंदर सुखंड से स्नेह हाथ मुरली मनोहर राधिका रसिक मानसिता निधे स्वप्रिया चरण सिंचरी को और श्याम सुंदर यदि आप हमारे पर में प्रसन्न हैं तो आपसे बस एक यही चाहती हूँ क्या चाहती हूँ आपकी जो प्राण बल्लभा आपकी जो प्राण प्रिया श्रीमती राधिका है
उनकी चरणी की चिंतरी हमें बना लो और हमें किसी भी चीज से खरीद दे। इसी तरह से हमारे समस्त शास्त्रकारों ने किया है। एक बात मैं कहूँ, प्राणिकेत के लिए तो बहुत बातें हैं, इधर जन्म का समय भी हो गया है। मैं एक बात कहता हूँ, नंद बाबा वसुदेव जी यहाँ से लड़के को ले गए, मान लिया कि वो लड़का उन्हीं का है, वो ले गए गोकुल में, गोकुल से एक लड़की को ले आए, अदला बदली हुई। शर्त ये रही, ये बेटा मैं तुमको देता हूँ और ये बेटी मैं देता हूँ, यदि मैं कभी इसको लौटा करके दे दूं तब ये बेटा हमारा होगा। कभी वसुदेव जी ने उस बेटी को गोकुल में लौटाया तो वो बेटा के कहने के अधिकारी कैसे हैं? यदि करते हैं तो अन्याय करते हैं और उनका यह काम अन्याय उचित है। उनका वो कृष्ण नहीं, लड़की को लौटाए वहाँ और फिर अपने बेटे को अपने यहाँ कहें यहाँ हमारा बेटा है,
लड़की रहेगी
इसलिए उनकी लड़की भी रहेगी, बेटा नहीं होगा, पहले लौटाए। दूसरी बात, श्रीमद भागवत में यह बतलाया गया, अदृष्ट तनुजा विष्णु, विष्णु की अनुजा कंस के हाथों से उछल कर गई और हस्तभुजा दुर्गा का रूप धारण किया। तो ये विष्णु की अनुजा वो कैसे हुई? गोपियां मथुरा में कृष्ण के बाद में कोई लड़की पैदा हुई जो कृष्ण की बहन हो? उनकी बहन कहाँ हुई? इसलिए कृष्ण को वहाँ पर जन्म लेना है तभी उनके पीछे से वो जो लड़की हुई उनकी अनुजा हो सकेगी, अन्यथा अनुजा नहीं होगी। अनुजा माने होता है पीछे जन्म लेने वाली, यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं। सुभद्रा तो हुई संत के वध इत्यादि के पीछे से, पहले नहीं हुई, इसलिए अदृष्ट अनुजा विष्णु, विष्णु माने कृष्ण, कृष्ण की बहन ये जोगमाया जी हैं, उस जोगमाया को यहाँ पर ले आए और उनके हाथों से उछल करके चली गई और बोली ये रेखन तू हमें कैसे मारेगा, तुम्हारा जन्म लेने वाला, तुम्हारा मारने वाला तो दूसरी जगह जन्म दे दिया। दूसरी बात, आत्मज कहते हैं जो आत्मा से उत्पन्न हो, इसलिए नंदात्मज वहां श्रीमद भागवत में कहा गया, नंद के आत्मज हैं। यहाँ पर उनकी नाड़ी कटी गई गोकुल में, यहाँ पर नाड़ी काटने का कोई प्रश्न नहीं, कोई संस्कार नहीं हुआ, इसलिए ये उसके कैसे हो सकते हैं? अधिक से अधिक यहाँ पर वासुदेव जी का प्रकट हुआ। अभी एक सब उन्होंने हमारे एक विद्वान ने कहा था, यशोदा के लिए यशोदा माने
जाया,
कृष्ण जाया,
नंदो जाया,
नंद जाया, नंद जाया माने क्या? नंद की पत्नी जो कि जाया माने जन्म देने वाली है, किसकी? कृष्ण की, अन्यथा कृष्ण की जननी वो नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कितना उदाहरण दूं, लाखों उदाहरण हैं, समय होता तो आप लोगों को मैं कुछ कुछ परिवेशन करता, किंतु समय नहीं।
पशुपांग जाए,
पशुपांग जाए इत्यादि भी बतलाया गया है, बहुत बहुत से भी श्लोक हैं, इसलिए इस पर अधिक रूप में मैं नहीं जानता, किंतु मैं यही बतलाना चाहता हूँ। आप लोग सभी लोग यही समझेंगे, यशोदा जी ये पूर्ण पुत्र हैं, ये श्याम सुंदर यदि देवकी की हैं तो वो अंश रूप में वो वासुदेव कृष्ण हैं, वो नंद कृष्ण नंद नंदन नहीं है, वो रसो वैसा नहीं है, ब्रज के रहने वाले वो नहीं है, राधा जी के साथ में ये चतुर्भुज कभी नहीं बैठे, इसलिए राधा नाथ जो है राधा कांत है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, आज ये राधा कांत जी का आविर्भाव वहाँ पर हुआ है। आज उन्हीं की बधाई में यहाँ के मथुरा के सुंदर सुंदर मधुर कलाकार लोग उपस्थित हैं, मैं उनका ऋणी हूँ, ये इसी उत्सव को बहुत सुंदर से सुंदर किया है। मैं समझता हूँ कि कृष्ण जन्मभूमि में उत्सव हो रहा है, किंतु इतना सुंदर और अच्छी तरह से जो यहाँ पर मन रहा है वहाँ पर कदापि संभव नहीं, वहाँ पर तो पुलिस से एकदम समस्त पाटा गया है, वहाँ पर कुछ होने की संभावना नहीं, वहाँ पर जसोदा इनको वसुदेव और देवकी को वहाँ पर हथकड़ी अभी भी लग रही है, वो नजर में हथकड़ी कब खुलेगी, कृष्ण कब वहाँ से आएंगे गोकुल से और उस हथकड़ी को दूर करेंगे, मैं वही उनसे प्रार्थना करता हूँ।
निदाई गौर प्रमाण
आज आप मुझे यही गा करके एक वक्तव्य और मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कल आप लोग कृपा करके वहाँ पर पधार सकते हैं, अब पधारिए और वहाँ पर थोड़ी सी बधाई के कीर्तन करो, जो इसमें नहीं कर सके हैं वो लोग हमारे यही कल भी पौरोहित करेंगे, यहाँ पर एक महामंत्र का कीर्तन हो जाए और इसके बाद में हम लोग वहाँ से समाप्त करेंगे, प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। और एक बात और, कल भंडारा हो रहा है 11 बजे से लेकर रात तक चलेगा, आप सब लोगों से निवेदन है भंडारे में बता रहे हैं और जबकि इसी को गौ प्रमाणे जय जय श्री
और लगा लीजिए कुछ और बढ़ा दें,
सुनने में 10 मिनट में
10 मिनट निकाल लेंगे हम, 10-15
करके बल्लभाचार्य जी के दृष्टिकोण से कृष्ण तत्व और कृष्ण की लीलाओं के संबंध में उन्होंने कुछ बतलाया। जिसमें संगतियां भी थी और कुछ असंगतियां भी थी, अंतिम हीरालाल जी बोले विद्वान आदमी को विद्वान आदमी, किंतु उन्होंने एक बात कहा, मथुरा में जो जन्म लिए जब उन्हें प्रकट हुए गोकुल में वही दोनों एक ही, और फिर बोले यहां जो हुए वही नर्मद लीलाएं की, वही नर्मद लीलाएं की, ऐसा मालूम पड़ा कि उनको ऐश्वर्य और माधुर्य के संबंध में क्या प्रभेद है उनके समझ में शायद नहीं है। और भी बहुत से बात वैसे बोला, किंतु मनोहरलाल शास्त्री
वसंत
गौरी वैष्णव के विचार लेकर के उन्होंने कुछ अध्ययन किया है, पूरा तो नहीं किया किंतु हाँ अध्ययन उन्होंने किया है। हीरालाल जी करें हम गौरी वैष्णव का ग्रंथ समालोचन करना चाहते हैं सर्वोत्तम आप हमको उपलब्ध कराए समय पर, या मैं आऊंगा तो आपसे मैं समझता हूँ कि भागवत पर समस्त टीकाकारों के विचार जान लेने पर भी
गौड़ीय वैष्णव वैष्णव के विचार के लिए नहीं कोई ज्ञान है तो उनके विचार में कभी भी परिपूर्णता नहीं आती। कुछ न कुछ सिद्धांत में गड़बड़ रहेगी। वो लोग कहते हैं कि गोपियां तीन प्रकार की थी, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक सात्विक राजसिक और सामसिक। इन लोगों में सामसिक का होना ही कहां से संभव है, तो इसमें कि वो शक्ति है ये सब संभव पर नहीं। जैसा हम तो ये इसके संबंध में पुनः पुनः बतलाते रहते हैं, पाठ भी करते हैं। अभी हम लोग के नवदीप धाम से पास पर जगत महाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं। आज कृष्ण लीला के संबंध में, सत्व के संबंध में और जन्माष्टमी के संबंध में क्या क्या विशेष बातें हैं अभी हिंदी भाषा में ही ये बतलाएंगे। आप लोग उनका श्रवण करें और भी ब्रह्मचारी जो कुछ कहेंगे। उन्होंने भगवान की जो अघटन घटन प्रत्येकी शक्ति है इसको तार्किक लोग, ऐतिहासिक वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, आधुनिक जो शिक्षित समाज है वो तर्क की कसौटी पर कस करके उस चीज को मानना चाहता है, अन्यथा वो नहीं मानेगा। वो लोग कृष्ण चतुर्भुज फायदा हुए संक्षत्र गदा पद में लेकर 16 वर्ष के रूप में इसको वो लोग इतिहासकार और वो लोग जिनका नाम लिया वो लोग स्वीकार नहीं करते। उतना ब्रज में आई और कृष्ण को संत पिलाया, कृष्ण ने उसके प्राण हरण कर लिए, यही नहीं मानते। सप्तासु, बत्तासु, अगासु, तृणावर्त और केसी इत्यादि जो मारे गए और जसोदा मैया को अपने मुख में विश्व ब्रह्मांड दिखला दिया, ये ब्रज की जो लीलाएं हैं अलौकिक लीला। और द्वारका में, मथुरा द्वारका में जो ऐश्वर्य की लीलाएं हुई, जैसे महाभारत युद्ध में अर्जुन को विराट रूप दिखलाया, समस्त विश्व को अपने मुख में दिखलाया, द्वारका जी ने ब्रह्मा जी को असंख्य ब्रह्मा जी को दिखलाया, कृष्ण का ऐश्वर्य दिखलाया, नारद जी को करो कितना 16,108 रूपों में दर्शन एक साथ में दिया, रासलीला में 16,108 हो गए या करोड़ों कृष्ण बन गए दो दो गोपियों के बीच में, ये सब को नहीं माना क्योंकि तर्क की कसौटी पर कष्ट रहे। इसलिए उन लोगों ने ब्रज की लीलाओं को एकदम छोड़ दिया, महाभारत की कुछ लीलाओं को लिया। कृष्ण गए हैं द्वारका में, द्वारका से वहां हस्तिनापुर में दौत्य करने के लिए, और कहें जैसे 5 गांव तुम लोग दे दो पांडवों को, अश्वाना ना कर लो, युद्ध मत करो, यहां तक मानेंगे, ये सब बातें मानते कि कृष्ण नीतिज्ञ थे। किंतु वहां पर करों को जो अपना विराट रूप दिखलाया, द्रौपदी का चीर हरण हुआ और उसमें कृष्ण ने अलौकिक शक्ति से उनके चीर को बढ़ाया, ये सब तो नहीं वो लोग स्वीकार करेंगे। उसकी तो बात छोड़ दीजिए, ब्रज में, मथुरा में और द्वारका लीला में जो वैशिष्ट है इसको भी स्वीकार नहीं करते। ब्रज में माधुर्य प्रकाश, मथुरा में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का एक साथ में प्रकाश, और द्वारका में माधुर्य प्रकाशित होने पर भी ऐश्वर्य के द्वारा अच्छा। ये तीन प्रकार की लीलाएं कृष्ण की हैं, इसको भी वो लोग नहीं मानते। देखिए, उतना गई ब्रज में बड़ी भारी साठ हाथियों का बल वाली पुतना, इच्छा के अनुसार अपना रूप बना सकती है। आज कोई कोई इसको तो बना नहीं सकता, इसलिए उसको नहीं मानेंगे। ये पुतना राक्षसी होते हुए और सुंदर मैया का रूप बना करके गई, और देवी से भी अधिक सुंदरी हो गई। दूसरी बात, पुतना वहां पर पहुंची। कल एक बात उन लोगों ने कहा, वो समझ में नहीं हमारे। उतना आई तो 16,000 गोप बालकों को मार दिया, और मार करके उनका रक्त पान कर दिया, और उनका रक्त उसके मुख में लगा हुआ है। पीछे से कृष्ण को अपना स्तन दिया, स्तन में वो रक्त भर लिया था 20, और उसमें रक्त भी लगा। ऐसे कृष्ण ने मुख में जब दिया तो उन लोगों का उद्धार हो गया, और फिर वही लोग गोपी बन करके जन्म लिया पीछे से, और कृष्ण ने उनके साथ में राज किया। नजर ने कहा उधर का पिंड गुदर के भाग, मैंने उधर की नाड़ी, मैंने पेट की नाड़ी भूरी लगा दिया। नजर ने कहा वहां पर देखिए, पुतना ने पुतना गई खूब सुंदर उदाहरण कर दिया, और बच्चे को गोदी में उठा लिया। कति ऐसे ये तुम्हारी मैया नहीं है, मैया मैं हूं। ऐसे लड़के को लाल को हृदय से कहीं बाहर निकाला जाता है, बस गोदी में लेकर के। जो सोदा मैया से भी अधिक लाल पालन करने लगी, मैया ने कहा कि सचमुच में इसी का बेटा है, हमारा बेटा नहीं। और वो आश्चर्यचकित होकर के वहीं पर खड़ी रह गई, और कुछ मना न कर सकी ये कौन है क्या है, वो भी मोहित हो गई। इतने में उसने स्तन में कृष्ण का मुख लगाया, कृष्ण डर के मारे आंख बंद कर दिया। लिखा है भागवत ये बंद कर दिया, ये किस लिए बंद किया ये नहीं लिखा। टीकाकारों ने बतलाया ये बहुत कारण इसके हैं, 16-17 कारण ये क्यों आंख बंद कर दिया, इसलिए वर्ण किया। अरे ये तो पुतना बनकर के राक्षसी मैया बनकर के आई है, और मैं इसको देख करके फिर मार डालूंगा, ऐसा कभी नहीं, इसलिए इसको देखेंगे। दूसरी बात, बच्चा किसी को देख करके और हठात डर जाता है, तो इसलिए ये डर गए, इसने आंख बंद कर दिया। और भी बहुत से कारण बतलाए हैं, किंतु यहाँ पर कृष्ण नरलीला का व्यवहार कर रहे हैं। सब समय कृष्ण का ब्रज में नरलीला का भाव रहेगा, ऐश्वर्य मथुरा द्वारका की भांति नहीं। यही जो थोड़ा समय दिखला करके अब आरती होगी, फिर इसके संबंध में यदि कल हम लोग बैठेंगे तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। मेरी तो इच्छा थी कि और सब शुभानंद जी, नवीन जी, मंगल महाराज जी, ये सब लड़के लोग हैं, अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, किंतु समय झट चला गया, 8 तो बजी गए हैं। इसलिए मैं संक्षेप में दो एक बातें बतला करके हम आरती कराए। तो अब देखिए, यहाँ पर नर्वत लीला से आंख बंद की और उसकी गोदी में चले गए। कृष्ण ने जितने भी अश्वों को ब्रज में मारा, कोई भी प्रयास मारने के लिए नहीं किया, हाथ से भी मारने का प्रयास नहीं किया। उतना को भी मुख में तन लिया और चूसा, और दूध को पिलाने के लिए आई।
अभी तो सुनते हैं, आधा घंटा बाद आरती करने का, अभी तो सुनते हैं।
अभी सब लोगों को घर में कितना काम छोड़ कर के सब आए,
बहुत छोटा है।
वो लोग तो शायद नहीं आएगा तो सबसे किस्म करा दे आप आते के बाद मैं जाएंगे नहीं, यदि आएंगे तो उनके लिए प्रतीक्षा करेंगे। हो सकता कृष्ण ने दूध पीना आरंभ किया आ गए तो कौशिक जी घर में आई, ने सूचना आरंभ किया, हाथ से स्तन पकड़ते हैं बच्चे और मुख से चूसते हैं और इसी तरह से जब उसका प्राण निकल गया तो कृष्ण क्या करें? कृष्ण तो दूषित ही रहते, ये नर लीला है। हाथ से प्रयोग नहीं किया जिन्हें मारा ऐसे ब्रज में कहीं भी ऐसा है वो कोई लीला नहीं, मारने का कोई अस्वस्थ बात करने का कुछ भी प्रयोग नहीं किया और वो बेचारी मर गई। बल्कि देखो जिस समय वो मरने लगी विकराल रूप धारण किया और धारण करके आकाश मार्ग में हुई, बच्चे को पकड़ करके निकालना चाहती है स्तन को, बच्चा छोड़ दे भैया रे कहकर के रोने लग गई और 10,000 हाथियों का बल से उसको छुड़ा करके फेंकने लगी। तो इन्होंने मैया अब नहीं छोड़ूंगा, इन्हें उसको बेटा बना दिया ना, अब मैं नहीं छोड़ूंगा,
पकड़ते हैं छोड़ते हैं,
मैं जिसको पकड़ता हूँ या जिसके अंदर में चला जाता हूँ न निकलता हूँ न छोड़ता हूँ, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जरूर अब तुमको मैया बना करके ही रहूंगा। इसलिए वो आकाश मार्ग में विकराल रूप धारण किया, भैया के पास में जा रही थी, संत भैया के पास, जल्दी से चले और वो हमारी रक्षा करें। किंतु कृष्ण ने कहा कि गोकुल से आगे नहीं बढ़ने देना, गोकुल नहीं तुमको रखेंगे, मैं तो मथुरा जाता नहीं, वृंदावन
नहीं
जाऊंगा तो तुमको कैसे जाने दूंगा और तुम्हारी सन में पी रहा हूँ, इस स्थिति में पी रहा जाने का बस पान किया दूध आ गए वहीं पर विकराल रूप नहीं दी, कोई भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया या हाथ से मारा या पैर से मारा कुछ भी नहीं। यहाँ देखो मथुरा में कंस की सभा में आ रहे हैं कुबल्या के हाथी, कुबल्या ही कुल्ला पर हाथी रास्ते में मार्ग रोक करके खड़ा था। कृष्ण ने महाव से कहा कि भाई रास्ता छोड़ करके उधर में हटाओ, तो बड़े अहंकार से कहा कि उधर से तुम चले जाओ और जिधर जाए एकदम रास्ता को एकदम आड़ा करके और उसको रोक, कहीं से जाने का कोई भी उपाय नहीं, तो ये हटाएगा कि नहीं हटाएगा तो तू हटा ले। बस थोड़ी सी बात हुई और कृष्ण बलदेव जी आगे पीछे होकर के हाथी को घुमाया दो चार बार और पकड़ने में हाथी अपने आप गिर गई। गिर जाने के बाद यहाँ कुछ पौरुष प्रकाश किया, कुछ हो रही है छीना झपटी हो रही है, ब्रज में ऐसा कोई भी लीला छीना झपटी का या भागने का या कृष्ण किसी को मारने का, चाहे वो चुनावर्त पद हो चाहे ब्रज में और कोई अघासुर को मारने को उसके पेट में चले गए अपने आप, कोई अपना पौरुष प्रकाश नहीं किया, जब अपने आप हो जाता है वो दूसरी बात। इसीलिए इसको कहते हैं महाभूत लीला नर्वक लीला, यहाँ ऐश्वर्य का प्रकाश हो और न हो वहां पर नर लीला से अतिक्रम उनकी लीलाएं नहीं, इसको कहते हैं मधुर लीला। तो कृष्ण ने यहाँ किसी को भी असुरों को मारा बहुत से, किसी को मारा नहीं, अपने आप कृष्ण से टकरा करके अपने आप मर जाते हैं। तो कृष्ण क्या करें, एक असुर उनको आकाश में उड़ गया, कृष्ण की इच्छा से जरा आकाश में घूम तो आए,
हवाई जहाज में
उसमें हवाई जहाज तो थी नहीं, इसलिए कृष्ण ने सोचा भाई इसमें अपने आप तो मैं उड़ तो जाऊंगा किंतु ये नर्मदा से विपरीत हो जाएगी, इसलिए हमको तो आकाश में चलना कैसे, कोई चुनाव असुर आया और उनको पकड़ करके आकाश मार्ग में उड़ गया।
कृष्ण ने देखा जा रहे मैं मर ना जाऊं, बस गले को पकड़ लिया डर के मारे, और उसके गले के पकड़ने से ही रसगुल्ला जैसी आंखें निकल जाए और मर जाए तो कृष्ण क्या करें, मरने का कोई प्रयास नहीं। और यहाँ देखो छीना झपटी होने लगी, होने के बाद में वो उसके पेट में चले गए, दोनों पैरों के बीच से कृष्ण पेट में चले गए। अब बलदेव प्रभु जी ने जरा पूछ पकड़ लिया और जिधर हाथी गए तो उधर से पीछे पीछे, और कृष्ण को पकड़ने के लिए जमी दो पैरों में घुटने में टेक करके और पूछ से खुलने में गिर गया, बैलेंस ठीक नहीं रहा, जिन्हें बड़ा हाथियों के दांत को उखाड़ा और उसी से हाथी को और महावत को और रावण रक्षकों को मारा। यहाँ हाथी दांत का प्रयोग किया, चक्र चक्र का गदा का और धनुष बाण इत्यादि का कुछ भी प्रयोग नहीं किया, दांत उखाड़ा, एक तरह से खेला है। ऐश्वर्य लीला भी है, माधुर्य लीला भी है, खून के छिके आ गए कृष्ण, और भी सुंदर कृष्ण बढ़ गया और हाथी का दांत लेकर के यहाँ पर रख दिया, लंबा चौड़ा मोटा दांत तो बलदेव के प्रभु ने दिया और दोनों अखाड़े में रंग शाला में पहुंचे। वहां पर पहुंच करके चारू मूर्ति के इत्यादि क्षण चारू मूर्ति ने बलदेव और कृष्ण को पकड़ लिया। यहाँ भी चारू मूर्ति से युद्ध हुआ, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, हाथ से कभी सिर से खेल रहे जैसे कुश्ती दंगल होता है कुश्ती होने लगी, और चारू मूर्ति उनको मारने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, खेल ही खेल में उनको नीचे गिरा करके उसके छाती पर चढ़े और वो जमीन मर जाए तो वो क्या करें। थोड़ा सा प्रयोग किया और द्वारका में क्या किया, अस्त्र शस्त्र से लड़े हैं, शंख का इसका भी चक्र का भी प्रयोग किया है, शिशुपाल इत्यादि बदल रहे और सब युद्धों में वहां पर नलीजा को अतिक्रम करके वहां पर सब पीछे हैं, इसलिए वो ऐश्वर्य लीला है। साधारण लोग इन सब लीलाओं को तब की कसौटी पर कहते हैं, हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो जिस काम को हम नहीं कर सकते वो कृष्ण नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य थे, किंतु कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण तो भगवान है, इसी को वो समझ नहीं पाए। कोई साधन भजन है नहीं, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन है नहीं, संतों की कृपा है नहीं, तो वो क्या समझेंगे, इसलिए वो समझ नहीं पाए। इसलिए कृष्ण की जो लीलाएं हैं ऐश्वर्य माधुर्य और ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों की विधि थी, और भगवत्ता के विषय में हम अगले कल हम आप लोगों को बतलाएंगे, जैसे 6 बजे हम लोगों का प्रवचन आरंभ होता है ऐसे ही स्वाभाविक रूप से होगा। अभी हमारे बीच में कौशिक जी पधारे हैं और उनका लड़का भी बहुत सुंदर संगीत उसको सिखला रहे हैं, वो भी हमारे ब्रज का एक किसी दिन गौरव होगा। जैसे ये लोग इनके पिताजी को पिताजी अब तो इनके परलोक चले गए, वल्लभाचार्य संप्रदाय के थे और ध्रुपद धमार और शास्त्रीय संगीत के ब्रज के मालिक ये हस्ती थे वो, और उन्हीं की कृपा से इनके ये लड़के कल आप लोगों ने सुना, आज अभी आपको दो एक पद सुनाएंगे। अरे हारमोनियम जरा लेकर के इनको दे दो। Thank you.